धवला पुस्तक 9 लेक्चर नंबर 19 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वर्चायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् सिद्धादद्धट्ठमला विशुद्ध बुद्धिये लद्ध सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु भड़ारया सौवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। अभी हमारा ये चौथा खंड चल रहा है, उसका नाम है वेदना, और उसमें कृति अनुयोग द्वार की अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। 9वें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 182 पर हम गए, 182। देखो यहाँ नयों की चर्चा चल रही थी, अभी शिविर हुआ ना, 7-8 दिन का गैप हो गया, तो हमने देखा था कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इस तरह से दो नए, एक तो एक बाजू 7 नयों संबंधी चर्चा की, एक बाजू वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी कहते हैं। 7 नए कहने से नयगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीनों द्रव्यार्थिक नय है। ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये पर्यायार्थिक नय, पर्याय को विषय करने वाले है, उसको पर्यायार्थिक कहते हैं। पर्याय ने किसी भी अपेक्षा भेद करना, केवल पर्याय पर्याय की बात नहीं, परंतु किसी अपेक्षा द्रव्य में भेद करके जो कथन होता है या जो, और उसमें कंडीशन क्या होती है नयों में, कि प्रमाण से वस्तु को जाना हुआ है, प्रमाण ने सर्व एंगल से वस्तु को जाना है, वस्तु को जानकर फिर किसी एक अंश की मुख्यता से पूरी वस्तु को उस रूप देखते हैं या कहते हैं, उसको नय कहते हैं। तो ये उसमें हमने देखा था कि बहुत प्रकार के नय हो सकते हैं, क्योंकि जितने वचन है उतने नय हो सकते हैं, इस तरह से कथन आया था 181 पृष्ठ पर। अभी हम 182 पृष्ठ पर आए हैं। शुरुआत से पहला पैराग्राफ हुआ था, वहां से फिर पढ़ते हैं। ये सभी नए अपने विषय को सर्वथा न मानने के कारण समीचीन होते हैं। क्या कहना चाहते, समीचीन यानी यथार्थ, सही। क्यों सही है, क्या लिखा, अपने विषय को सर्वथा न मानने के कारण। एक नए कहता है कि द्रव्य नित्य है, किसी अपेक्षा स्यात कहो, द्रव्य नित्य है, उसके ध्रुव अंश की अपेक्षा देखेंगे तो ध्रुव अंश की तरफ से देखेंगे तो द्रव्य नित्य है। हमने बोला कि ये सोना हमारे घर में 4 पीढ़ी से चला आ रहा है, तो हमने कहाँ देखा, सोने की तरफ देखा, उसके पर्याय, उसके बंगड़ी बनाए के, हार बनाए के, फिर उसको तोड़कर दूसरे कुछ गहने, उसकी ओर नहीं देखा। परंतु सर्वथा ही ऐसा अगर मानेंगे, वो नए से वस्तु सर्वथा नित्य ही मानेंगे, तो उसमें पर्याय होते ही नहीं ऐसा मानेंगे, तो वो मिथ्या हो जाएगा, समीचीन नहीं होगा। इसलिए यहाँ क्या कहते, देखिए फिर से, ये सभी नए, नए हमको उसी को कहेंगे, नहीं तो वो दूर नए हो जावे, खोटी अपेक्षा हो जाए। तो ये सभी नए अपने विषय को, भले जो कोई नित्य को विषय कर रहा है, कोई अनित्य को विषय कर रहा है, परंतु सर्वथा नहीं मानता, यानी वस्तु सर्वथा ऐसी ही ऐसा नहीं मानता, किसी एक अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, परंतु उसको दूसरे नयों का स्वीकार है, दूसरे अपेक्षाओं का स्वीकार है, क्योंकि वस्तु में तो अनंत धर्म होते हैं, और यहाँ तो एक धर्म की मुख्यता से किसी नए ने उसका कथन किया है। अगर वो सर्वथा ऐसा ही है, ऐसा अगर कहेंगे या जानेंगे कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। फिर इस वाक्य को पढ़ते 182 पेज, ये सभी नए अपने विषय को सर्वथा न मानने के कारण समीचीन नहीं होते हैं, क्योंकि वे प्रतिपक्ष धर्म का निराकरण नहीं करते, उसको रूल आउट नहीं करते, अपने धर्म जिस धर्म की नित्य है, अनित्य है, जो कुछ है, एक अनेक, जो इतने हमने अस्थि नास्ति जो कोई धर्म देखे है, अपना धर्म का प्रतिपादन करते हैं परंतु दूसरे का निराकरण नहीं करते। किंतु ये ही जब दुराग्रह पूर्वक, दुराग्रह ने खोटा आग्रह, हठ से वस्तु स्वरूप का अवधारण करने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं। दुराग्रह क्या, जिस अपेक्षा से बात की थी, तो कहते अपेक्षा से ऐसा नहीं मानने पर सर्वथा अगर मानने लगेंगे तो कहते कि वस्तु स्वरूप उसने ऐसा सर्वथा रूप से मान लिया तो वो खोटा हो गया। जैसे वो स्टोरी आती है ना, सात अंधे थे और वो हाथी को हाथ लगा के उन्होंने जानने की कोशिश की, तो किसी के हाथ में वो पैर लगा तो उसने कहा अरे ये तो खंभे जैसा हाथी है, किसी ने पूंछ पकड़ी अरे तो ये रस्सी जैसा हाथी है, किसी ने दांत पकड़े, किसी ने कान पकड़े। तो अगर वो सर्वथा ऐसे पूरा हाथी खंभा जैसा ऐसा अगर कहेंगे तो वो हाथी का स्वरूप नहीं होगा। क्या कहें, हाँ पैर हाथी जैसे है, पूंछ रस्सी जैसी है और कान सूप जैसे, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो यथार्थ है। सर्वथा वस्तु, पूरी की पूरी वस्तु ऐसी है कहेंगे तो वो तो झूठ हो जाएगा। यही यहाँ कहा है कि दे जब दुराग्रह पूर्वक वस्तु स्वरूप का उदाहरण यानी जानने वाले होते हैं तब मिथ्या नए कहे जाते हैं, क्योंकि वे प्रतिपक्ष का निराकरण करने की मुख्यता से प्रवृत्त होते। सर्वथा कहने से उसका अर्थ क्या, वस्तु नित्य ही है कहेंगे, नित्य ही है कहेंगे तो उसके पर्याय का निषेध कर रहे, तो ये समीचीन नए नहीं है। हम कहेंगे वस्तु किसी अपेक्षा से नित्य है, यह अपेक्षा बताकर वस्तु ध्रुव दृष्टि यानी द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो नित्य है। यहाँ उपयोगी श्लोक, ऊपर का श्लोक 59 नंबर का, यथैक कंकार कमर्थ सिद्धये समीक्ष शेषम स्वसहाय कारकम तथैव सामान्य विशेष मातृका नयास्तवेष्टा गुण मुख्य कल्पतः। उसका अर्थ देखते हैं, जिस प्रकार एक कारक शेष को अपना सहायक कारक मान करके प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, अर्थ देखते हैं उसका, हाँ उसी प्रकार सामान्य व विशेष धर्मों से उत्पन्न नए आपको मुख्य और गौण की विवक्षा से इष्ट है। यानी वो स्वयं जो कथन करे वो मुख्य है, अन्य को गौण करके वो अपना कथन कर रहे, अन्य का निषेध करके नहीं। वो आप हमेशा बोलते हैं ना, ये लालचंद भाई मोदी थे, वो प्रवचन में बताते थे कि एक आंख बंद करके देख रहा है परंतु वो दूसरी आंख फोड़ना नहीं है, क्या नहीं है ना, कभी हम इस आंख से देखेंगे किसी एक से, ये तो दृष्टांत बहुत स्थूल है क्योंकि किसी भी आंख से देखेंगे तो वैसी वस्तु दिखेगी, परंतु आंख है नए तो किसी नए से देखते हैं परंतु वो दूसरे नए का स्वीकार है, उसको गौण कर दिया कुछ काल के लिए वस्तु स्वरूप बताने के लिए। तो एक कारक का अर्थ समझते हैं, कारक है ना विभक्ति जिसको हम कहते हैं व्याकरण में, जैसे हमने किया उसने ये चीज लाई, यानी कोई कार्य होता है तो किसने किया, क्या किया, कैसे यानी किस साधन से किया, किसके लिए किया, किसमें से किया, वो तो हम यानी षटकारक तो वस्तु स्वरूप में बताते ही है, परंतु जो लौकिक में उसके सभी विभक्ति है ना, सात विभक्ति और एक संबोधन, तो एक जो है वो दूसरे का निषेध नहीं करती है। या वस्तु स्वरूप में भी षटकारक अगर लगाएंगे तो एक कारक, क्योंकि क्रिया के प्रति तो इतने सब बातें होती है, कोई करने वाला है जो क्या किया उसको कहेंगे, उसका साधन क्या है, किसके लिए किया, किसमें से किया, ये सब एक कारक से बात करते, वहां अन्य कारक है क्या, नहीं नहीं इसने ही बस कर दिया, इसने ही कर दिया, कोई साधन नहीं था कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यानी वो भेद रूप से अगर समझाना है तो छह कारक है और एक कारक से हम कथन करते तो अन्य कारकों की वहां अपेक्षा है, उसका स्वीकार है, ये कहना चाहते। ये तो दृष्टांत कारों को दिया, ऐसे ही कहीं सामान्य से, सामान्य अंश की मुख्यता से होगी कथन, कहीं विशेष की अपेक्षा से, परंतु कहीं पर भी किसी भी अपेक्षा से कथन क्यों न हो, वो दूसरी अपेक्षा का स्वीकार है उसको। 60 नंबर, तएव तत् नहीं ऊपर य एव नित्य क्षणिकादयो नय मिथो न पेक्षा स्वपर प्रणाशिन तएव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षा स्वपरोपकारिण। उसका अर्थ जो नित्य व क्षणिक आदि नय यानी नित्य को विषय करने वाला अनित्य को विषय करने वाला परस्पर में निरपेक्ष होकर अपना व पर का नाश करने वाले क्या कहना चाहते हैं। जो नए कहते हैं वस्तु सर्वथा नित्य है तो वस्तु सर्वथा नित्य है वो कह दिया उसने तो उसने तो पर का विरोध करके क्या किया निरपेक्ष हुआ ना तो अपना ही नाश कर दिया क्योंकि वस्तु ऐसी होती ही नहीं है तो वो नए ही खोटा ठहरा वो नए ही का नाश हो जाएगा। ऐसे किसी ने वस्तु सर्वथा अनित्य ही ऐसा कह दिया तो उसने नित्य को स्वीकार नहीं किया तो वो स्वयं भी नए नहीं रहा क्योंकि नए तो उसी को कहते हैं कि प्रमाण से जानी हुई यानी वो दोनों सभी अंशों का स्वीकार है और एक अंश को वो मुख्य करके कथन कर रहा है। इसलिए कहते अपना वो पर का नाश करने वाले अपना और पर का यानी किसका वो नए परस्पर का नाश करने वाले क्योंकि वस्तु का या द्रव्यों का जीवों का तो नाश नहीं होने वाला। अपना और पर का यानी एक नए अपना भी नाश करता है और जो उसका दूसरा नए है उसका भी नाश करता है। तो कहते जो नित्य व क्षणिक आदि नए परस्पर में निरपेक्ष होकर हमने देखा था कि सापेक्ष नए होते हैं वो सम्यक होते हैं समीचीन होते हैं यथार्थ होते हैं और जो निरपेक्ष यानी दूसरे नए का स्वीकार नहीं करने वाले होते हैं तो वो अपना और पर का नाश करने वाले हैं और वे ही आप विमल मुनि तीर्थंकर के यहाँ परस्पर की अपेक्षा युक्त हो अपने व पर के उपकारी है। क्या कहते हैं वे ही नए अगर नए निरपेक्षपने कोई बताता है जानता है तो एक दूसरे का अपना भी पर का भी नाश करता है। अब वे नए जो है आचार्य है तीर्थंकर है वहाँ वो नए कैसे है परस्पर सापेक्षता से युक्त है यानी परस्पर की मैत्री उनके नयों की तो उन दोनों ही रहते हैं अपने वो पर के उपकारी है। ये तो कहने के लिए ऐसे कोई दो व्यक्तियां नहीं कि अपना पर का उपकार करने वाले दो नयों की बात है उपकारी यानी वस्तु स्वरूप सिद्ध हो जाता है। नीचे जरा देख लेते क्योंकि 59 को 3 नंबर दिया फुटनोट में और इसको 4 नीचे जरा देख लेते हैं क्या लिखा है। नोच एकांते न नया मिथ्या दृष्टि एव अच्छा अच्छा उसका है क्या प्रतिपक्ष निराकरण और 3 और 4 अच्छा उसके केवल वो नाम दिए बरोबर ठीक है कहाँ से लिए वो उसका रेफरेंस है बरोबर। अभी आगे बढ़ते हैं 61 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे मिथ्या समूहो मिथ्या चेत न मिथ्यैकान्ततास्ति न निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। ये लिखा ना निरपेक्षा नया मिथ्या निरपेक्ष नए मिथ्या खोटे होते हैं और सापेक्ष होते हैं वस्तु का अर्थकृत होते ना अर्थ को बताने वाले वर्तु वस्तु को सिद्ध करने वाले होते। अभी नीचे उसका अर्थ देखते हैं मिथ्या समूहो मिथ्या चेत मिथ्या नयों का विषय समूह मिथ्या है क्या कहना चाहते हैं। जो मिथ्या है उसका विषय मिथ्या है ना ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है अज्ञानी जैसा मानता है ऐसा वस्तु ही नहीं होती है। मिथ्या नहीं क्या है वस्तु सर्वथा नित्य होती है उसमें पर्याय परिणमन होता ही नहीं तो ऐसी कौन सी वस्तु इस विश्व में है तो कैसी ऐसी वस्तु ही कोई अस्तित्व में नहीं है यही कह रहे। मिथ्या नयों का विषय समूह मिथ्या है यानी उन्होंने जो विषय बताया है ऐसे जो वस्तु संबंधी कथन किया है ऐसी कोई वस्तु ही अस्तित्व में नहीं है। ऐसा कहने पर उत्तर देते कि वह मिथ्या ही हो ऐसा हमारे यहाँ एकांत नहीं है किंतु परस्पर की अपेक्षा न रखने वाले नए मिथ्या है तथा परस्पर की अपेक्षा रखने वाले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए वास्तव में अभिष्ट सिद्धि के कारण है यानी ये अपेक्षा रखने, इसलिए हमेशा वो स्यात पद आता है। या कहीं पर ये जिनेंद्र भगवान का कथन है और जैन मुनियों ने लिखा है, तो स्याद पद नहीं भी लिखा है तो वहाँ गर्भित है। जब मुनिराज कहेंगे वस्तु नित्य है, कहीं कहेंगे वस्तु क्षणिक है, तो उनके दूसरे नय का स्वीकार है वहाँ पर। ये नयों यानी वो स्याद पद क्या कहता है, तो वो तो नय की सिद्धि करता है। स्यात यानी किसी अपेक्षा, वाद यानी कथन, ये जिनागम की मुख्यता है, अन्य किसी धर्म में ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहते स्याद वाद, स्याद से कथन करता है यानी नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप बताता है। किसका वस्तु स्वरूप बताता है, तो अनेक धर्मात्मक वस्तु का। वस्तु कैसी है, अनेकांतात्मक है, अनेकांत यानी अनेक धर्म स्वरूप है, अस्थि नास्ति है, है तो नित्य अनित्य ये सब क्या है, अनंत धर्म है, और इसलिए वस्तु को अनेकांत स्वरूप कहते हैं। और ये अनेकांत का स्वरूप बताने वाला वो क्या है, स्यादवाद। इसलिए जिनवाणी कैसी होती है, स्यादवाद से मुद्रित होती है, ये विशेषता है जिनवाणी की। तो अन्य मतियों को ये ख्याल में नहीं आता, वो कहते ये शायदवाद क्या है, इस एक क्षण में ऐसा कहते हैं, एक क्षण में ऐसा कहते हैं, कभी कहते क्षणिक है, कभी कहते नित्य है, कभी कहते ऐसे नहीं, अपेक्षा सहित कहते हैं। और अपेक्षा सहित दोनों ही अपेक्षाओं का स्वीकार होने पर वस्तु की सिद्धि होती है, क्योंकि कथन करने में क्रम तो होगा ही और वस्तु को समझना है, तो उस काल में ये नयों की उपयोगिता होती है। वस्तु स्वरूप समझने आने पर फिर हमने उसमें उलझने के लिए नये को नहीं देखना है। वस्तु स्वरूप कैसा है, जैसे वस्तु नित्य है वैसे उसके अनित्य पक्ष भी, उसका परिणमन भी हर समय चल रहा है, इसलिए एक एक पक्ष को एक एक समय में बताकर वो नयों से वस्तु की सिद्धि बता देते। अब नीचे के दो लाइन, इन नयों का विषय उपचार से उपनय है, इनका समूह वस्तु है। क्या कहते हैं, नयों के विषय को भी नय कहेंगे या उपनय कहेंगे। विषय किसको किया, वस्तु के एक अंश को किया, एक धर्म को किया, और जितने वो समूह, उनका उपनयों का समूह यानी विषयों का समूह। जैसे द्रव्यार्थिक नय ने वस्तु नित्य है बताया, पर्यार्थिक ने वो अनित्य है बता दिया, वो नित्य और अनित्य जो अंश है द्रव्य के, उसका समूह मिलकर वस्तु है पूरी। अस्थि नास्ति, स्व से अस्थि पर से नास्ति, तो ये दोनों का जो विषय है वो मिलकर वस्तु होती है, क्योंकि इनके बिना अर्थ क्रिया कारित्व नहीं बनता। अर्थ क्रिया कारित्व ने अपना अपना जो प्रयोजनभूत कार्य जो कहते हैं, यहाँ उपयोगी श्लोक। देखो यहाँ श्लोक पढ़ते पहले ऊपर का 62 नंबर का, ये आप्तमीमांसा का श्लोक है। नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चयः अविभ्राग्भाव संबंधो द्रव्यमेकमनेकधा। उसका अर्थ नय एकांत और उपनय एकांत का विषयभूत, त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न सत्ता संबंध रूप समुदाय द्रव्य कहलाता है। वह द्रव्य कथनचित एक और कथनचित अनेक है। कथनचित एक क्यों किया, क्योंकि उसका समूह रूप से कथनचित एक, और उसी को भेदों की अपेक्षा देखेंगे तो कथनचित अनेक, एक ही द्रव्य को पर्यायों की अपेक्षा कहो, गुणों की अपेक्षा कहो, तो अनेक रूप है और सबका अखंड एक अभेद। वस्तु तो एक होती है, उसको कोई टुकड़े टुकड़े रूप नहीं रहती है, तो वो कथनचित एक है, परंतु उसमें भेद से कथन हो सकता है, इसलिए वो कथनचित भेद अनेक स्वरूप भी है। तो फिर इसको पढ़ते हैं, नय एकांत और उपनय एकांत विषयभूत। नय एकांत यानी एक नय की जो विषय वस्तु है, और उपनय यानी उसके विषय। तो ऐसे त्रिकालवर्ती पर्यायों का यानी जो अलग अलग नयों का विषय हो सकते हैं, तो ऐसे त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह। हम कहते हैं द्रव्य क्या है, तो द्रव्य हर समय किसी न किसी अवस्था पर्याय रूप से विद्यमान है, तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह उसको हम द्रव्य कह सकते हैं, यही तो यहाँ लिखा। तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न सत्ता संबंध, अभिन्न सत्ता ने द्रव्य की सत्ता किस रूप से है, ऐसा नहीं कि केवल पर्याय पर्याय ही है, वहाँ तो द्रव्य जो मूलभूत उसका जो सब्सटेंस कहो या उसका जो नित्य अंश वो भी वहाँ पड़ा है, उससे वो अभिन्न सत्ता है। जैसे सोने का उदाहरण बहुत बार देते हैं ना, सोना हमारे यहाँ चार पीढ़ी से है, परंतु सोना सोना तो रूप है ही, परंतु कभी वो बंगड़ी रूप था, कभी हार रूप था, वो अभिन्न सत्ता है। उसकी पर्यायों की उस सोने में तो अभिन्न सत्ता है, इसलिए अभिन्न ये अलग अलग पर्याय होते हुए भी वो सत्ता एक है। तो उसी को, उस समुदाय रूप उसको हम द्रव्य कहेंगे। वह द्रव्य कथनचित एक और कथनचित अनेक है, भेदों की अपेक्षा देखोगे तो अनेक रूप दिखेगा, और वो कायम रहने वाले नित्य अंश की अपेक्षा देखो तो एक दिखेगा। 63 एयदवियम्मिजेयत्थ पज्जया वैण पज्जया चावी तीदानागद भूदा तावदियं तम हवयदौवम। ये अलग है उसकी चाल भी। ये ऐसा कहना चाहिए, एयदवियम्मिजे अत्थ पज्जया वर्ण पज्जया चावी तीदानागद भूदा तावदियं तम हवैदौवम। ऊपर संस्कृत श्लोक थे, ये अलग प्राकृत गाथा है। देखिए उसका अर्थ देखते नीचे, एक द्रव्य में एयदवियम्मी यानी एक द्रव्य में जितनी अतीत अनागत व वर्तमान अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय होती है। लेकिन एयदवियम्मी जे अर्थ पज्जया वयन पज्जया यानी व्यंजन पज्जया चावी कौन सी, तीद यानी अतीद अनागद और भूत, यहाँ लिखा है तीदानागद भूदा, तीद यानी अतीद, अनागद यानी आने वाली भविष्य की, और भूदा यानी भूत हो चुकी है। तावदियम तम हवई दौवम, इसका अर्थ फिर देखते हैं। देखो एक द्रव्य में जितनी अतीत अनागत व वर्तमान अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय होती है उतना मात्र वह द्रव्य है। आपको याद है अर्थ पर्याय किसको कहना और व्यंजन पर्याय किस, भूल गए, कोई बात नहीं, आपको याद है नहीं ब्रह्मा? हाँ बोलो। हाँ देखो देखो, एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो सभी गुणों की जो एक एक समय की जो पर्याय है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। एक पहले में पहले गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय से दो शब्द आते हैं, तो गुण पर्याय में क्या लेना है, गुणों की पर्याय, तो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर सभी गुणों की जो अपनी अपनी पर्याय है उसको कहेंगे अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय एक तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय को भी कहते हैं, या लंबे काल तक जो पर्याय चलती है जैसे मनुष्य पर्याय देव पर्याय कहते हैं, वो केवल वो शरीर के साथ वाला मिला जुला नहीं लेना, वहां पर जीव की अपनी भी पर्याय है, उसका जो कोई आकार है, उसके जो कुछ भाव है, गति के औदयिक भाव वगैरह, वो सब मिलकर उसकी अपनी पर्याय वहां कह सकते हैं, उसको व्यंजन पर्याय कहेंगे। उन कहीं कहीं समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय ऐसी भी बात कहीं आती है, अभी यहाँ नहीं आ रही है। ये स्कंद है, पुद्गल 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 अनंत परमाणुओं की मिलीजुली पर्याय है, ये द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय, इसको कहेंगे समान जातीय द्रव्य पर्याय। असमान जातीय ने यहाँ मैं एक जीव हूँ और ये शरीर औदारिक शरीर का जो अनंत परमाणु है, कारमाण तेजस्व सब मिलकर एक जगह एक पिंड रूप है, उसको क्या कहेंगे हम, असमान जातीय, क्योंकि एक जीव जाति जुदी है, पुद्गल जाति जुदी है। जीव तो एक है और ये पुद्गल अनंतानंत है, अभी जो बंधी हुई अवस्था में हम कहेंगे उसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहेंगे। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय एक ही द्रव्य में अपनी अर्थ पर्याय हर समय चल रही है, और व्यंजन पर्याय भी है प्रदेशत्व गुण की। यही कह रहे हैं कि एक द्रव्य में जितनी अतीत अनागत और वर्तमान यानी तीन काल की अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय होती है उतना मात्र वह द्रव्य है, यानी उस पर्याय को छोड़कर अन्य कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो व्यक्त रूप तो पर्याय रूप से ही व्यक्त रूप है। 64 धर्मे धर्मे न्येवार्थो धर्मिणो अनंत धर्मण अंगित्वेन्यतमांतस्य शेषांतानां तदंगता। अनंत धर्म युक्त धर्मी के प्रत्येक धर्म में अन्य ही प्रयोजन होता है। तभी तो हम कहें ना अनंत धर्म है, प्रयोजन उसका अपना अपना जो कुछ योगदान है, अपना अपना कार्य है, वो अलग अलग ही होगा। सब धर्मों में किसी एक धर्म के अंगी होने पर शेष धर्म अंग होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक धर्म को हम अंगी कहा, अंग यानी अवयव, बाद पार्श्व उसके, और अंगी यानी उस सबका समूह, वो अंग है। अभी जैसे हाथी का उदाहरण, हाथ का शरीर का उदाहरण, तो इतने सारे अवयव है और सब मिलकर अवयवी कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं? वो धर्मी जो है वो अनंत धर्म उसमें होते हैं, द्रव्य में अनंत धर्म है और प्रत्येक धर्म का अन्य अन्य प्रयोजन है। अभी हम दो धर्म देखते हैं, नित्य और अनित्य, दो धर्म है वैसे होते अनंत है, तो नित्य धर्म है अनित्य धर्म है। सब धर्मों में किसी एक धर्म के अंगी होने पर, अभी हमने नित्य धर्म को अंगी बना दिया, वो द्रव्य नित्य है ऐसा कहा, मुख्य उसको करके कह दिया, तो उसमें शेष धर्म उसके अंग होते हैं, उसका अवयव हो जाते हैं। जिसको मुख्य करेंगे, हम द्रव्य को उस रूप देख रहे हैं, तो उस समय वो बाकी धर्म वो निकल जाते हैं कि उसमें मौजूद है। हाँ, तो बाकी धर्मों को यहाँ अंश कह दिया, धर्म कह दिया, और जिसको हमने नए को मुख्य किया है उसको हमने अंशी कह दिया, क्योंकि पूरी वस्तु को उस रूप देख रहे हैं उस समय, बाकी को उसमें गर्भित है, उसके उसमें चले नहीं गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, श्लोक तो हो गए, अब कथनचित है कथनचित नहीं है, जिसको हम कहें स्याद अस्ति स्याद नास्ति। कथनचित का अर्थ है किसी अपेक्षा, ये कथनचित किंचित वो नहीं अर्थ, यानी थोड़ा है थोड़ा नहीं है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि मराठी में कथनचित की शब्द किंचित के अर्थ में आता है, थोड़ा थोड़ा के लिए कथनचित, हाँ वैसा नहीं है उसका अर्थ। तो कथनचित है कथनचित नहीं है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित है और नहीं है, कथनचित है और अवक्तव्य है, कथनचित नहीं है और अवक्तव्य है, कथनचित है नहीं है और अवक्तव्य है। इस प्रकार ये सात सुनय वाक्य है। देखो इसमें क्या हुआ, मुख्य तीन लिए हमने, जैसे हमेशा बताती हूँ ए बी सी, वो सिंगल सिंगल रखे, इसको कहेंगे प्रत्येक भंग, फिर दो दो का भंग, ए बी ए सी बी सी, वो तीन और तीन छः हो गए, और ए बी सी वाला एक भंग होगा, ऐसे यहाँ पर है। मुख्य तीन कौन से लिए, कथनचित है कथनचित नहीं है कथनचित अवक्तव्य है। यहाँ अवक्तव्य का अर्थ होता है दोनों एक साथ नहीं कह सकना, यही अवक्तव्य है, यानी कहने के लिए असमर्थ है। तो कहने के लिए असमर्थ, यानी सर्वथा वस्तु कहने के लिए असमर्थ होती है ऐसा नहीं है, तो फिर उसका उपदेश ही नहीं मिलेगा। एक साथ दोनों धर्म नहीं कह सकते, ये उसका अवक्तव्य है। वस्तु अस्थि रूप है, स्व से अस्थि हो कह दिया, अब कहो नास्ति, वस्तु पर रूप से नास्ति है कह दिया, अब दोनों एक साथ बता दो। हमने ब्रह्मा को पूछा, दोनों आपकी बेटियां हैं, दोनों का नाम एक साथ बता दो, बोलो। हाँ, या तो हम पहली और फिर दूसरी का कह देते हैं, छोटी वाली का नाम पहले फिर बड़ी वाली का नाम कहेंगे, ऐसा हो सकता है, एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए उसको अवक्तव्य कहेंगे। हमने एक का नाम बता दिया, फिर कहेंगे दोनों एक साथ बताओ, अभी नहीं बता सकते, इसलिए अस्थि अवक्तव्य हो जाए। या कभी कभी क्या कहने, नास्ति कह दिया हमने, नास्ति बताया ना, अब दोनों एक साथ बताओ, नहीं बता सकते, इसलिए नास्ति अवक्तव्य आया। हमने कहा अस्थि है फिर नास्ति है, तो हमने क्रम से कहा दिया, तो कह दिया, अब दोनों एक साथ कहो, नहीं कह सकते, इसलिए वो अस्थि अवक्तव्य अलग है, नास्ति अवक्तव्य अलग है, और अस्थि नास्ति अवक्तव्य अलग है, इसलिए इतने भेद कर दिए उसके। उसको कहते सुनय वाक्य, सुनय ये सच्चे नय है, यानी सात नय इस तरह से होते, अस्थि नास्ति अवक्तव्य, अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्थि नास्ति अवक्तव्य। अस्थि नास्ति बताया था ना, हाँ अस्थि नास्ति, क्योंकि वे एक धर्म को प्रधान करते हैं। कथनचित शब्द लगाने से वो प्रधान हो गया, प्रधान हुआ तो उसको अन्य का स्वीकार है, ये उसका अर्थ होता है। इन सातों ही वाक्यों में स्यात् शब्द के प्रयोग का नियम नहीं है। देखो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ हर जगह वो स्यात् यानी कथनचित शब्द लगाया है, परंतु आचार्य हर बार वो स्यात् लगाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उनके तो सारा जो कथन होता है वो तो स्यात् पद युक्त ही होता है, क्योंकि वैसी प्रतिज्ञा का आशय होने से अप्रयोग पाया जाता है। अप्रयोग यानी उन्होंने वो नहीं लिखा तो भी ऐसी प्रतिज्ञा है उनको कि वो स्यात् स्वरूप ही वस्तु का कथन करेंगे। यानी जैनियों का जो कथन होता है, आचार्यों ने जो कथन किया है, उपदेश दिया है, वो स्यादवाद मुद्रित है, भले वहां स्याद लिखा है या नहीं लिखा है वो समझ लेना। इसलिए कहते प्रतिज्ञा उनकी वैसी है कि स्याद शब्दों का प्रयोग होगा, इसलिए अप्रयोग पाया जाता है, इन्होंने नहीं लिखा ऐसा भी हो सकता है। यही वाक्य सावधारण अर्थात अन्य व्यावृत्ति रूप होने पर दुर्णय हो जाते हैं। यही वाक्य अगर क्या है, अन्य व्यावृत्ति दूसरे का निषेध अगर कर दिया जाएगा तो वो तो दूर नहीं हो जाएंगे, सर्वथा अगर हो गए तो। इस प्रकार नय की प्ररूपणा समाप्त हुई। देखो हमने ये पेज 134 था ना शायद, 134 से ये बात चालू की थी। यहाँ तो ये बात हुई थी, देखो पेज नंबर 134 निकालना, 45 नंबर का सूत्र उन्होंने बताया था कि 24 अनुयोग द्वार होते वगैरह वगैरह। तो कोई भी ग्रंथ की शुरुआत होती है तो उसमें क्या क्या बातें बताई जाती है, उपक्रम। पेज नंबर 134 हाँ मिला ना, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय मिला क्या मनीषा? क्या चार बातें देखते, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। अभी हमने उपक्रम के भेद देखे थे, अनुपूर्वी यानी शुरू से अंत तक बताना या उल्टे क्रम से बताना या कहीं से भी बताना, वो अनुपूर्वी। नाम, नाम हमने देखे थे वो, उसमें नाम के कितने कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग गौण्य पद, नौ, हाँ 10 प्रकार देखे थे। फिर उसका प्रमाण यानी वो कितने पद उसमें हो गए, उसको वो तो प्रमाण में बता देते, वो ग्रंथ कितना बड़ा होगा वगैरह वगैरह, उसमें प्रमाण कहने में आता है उसका। फिर उसके बाद यानी प्रमाण में भी द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण वगैरह बहुत सारी बातें थी। अब ये हो गया प्रमाण। वक्तव्यता, वक्तव्यता यानी स्वसमय, परसमय या दोनों ऐसा होता है, यानी अपने स्वमत का कथन करना या परमत का कथन करके उसका निराकरण करना या दोनों का ही, इस तरह से जो कथन होता है वो वक्तव्यता कहते हैं। अर्थाधिकार ने उसमें कितने चैप्टर्स हो गए वगैरह अलग अलग, उसको अर्थाधिकार कहेंगे। ये तो उपक्रम के भेद हो गए। उसके बाद निक्षेप की बात आई थी तो हमने देखा था ना, बहुत बार हमने वो देखा है, द्रव्य नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, ये जो लौकिक व्यवहार के लिए जिसको काम में आते हैं, इसे वो निक्षेप की बात वहां बताई थी। अनुगम जो बताया था यानी जिसके द्वारा वो वक्तव्य की जो है उसको जो प्ररूपणा की जाती है, वक्तव्य ने अपना मत बताना वगैरह जो है वो उसके द्वारा प्ररूपणा की जाती है तो उसको अनुगम कहते हैं। और फिर उसके बारे में भी वो अनुगम जो है प्रमाण वगैरह प्रत्यक्ष परोक्ष उसकी चर्चा की थी अभी हमने। उसके बाद ये यहाँ अभी नयों की जो बात आई थी यानी अनुगम में हमने मति ज्ञान के भेद, श्रुति ज्ञान के भेद उसकी भी बात की थी बहुत विस्तार से, और यहाँ अभी नयों की बात बताई उन्होंने, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक और उसके जो सात भेद है उसकी भी चर्चा की थी। अब इस तरह से यहाँ सब बातें, यहाँ उपक्रम, निक्षेप, अनुगम, नय, यहाँ तक बातें हो गई। अब 184 पृष्ठ पर आना, देखो कर्म प्रकृति प्रावृत, यह महाकर्म प्रकृति प्रावृत भी कहते हैं ना उसके, कर्म प्रकृति इसका नाम है, ये प्रावृत चौथा प्रावृत है और वो अग्रायणी पूर्व के पंचम वस्तु जो है जिसका नाम चयन लब्धित है उस, ये तो हमने श्लोक के द्वारा इन्हें वो 134 पर अभी पढ़ा ना हमने, हाँ सूत्र में ही बताया था, अग्रायणी पूर्व हम देखें, 14 पूर्व है उसमें से ये अग्रायणी पूर्व, और अग्रायणी पूर्व में जो वस्तुएं होती है अलग अलग उसमें ये पंचम वस्तु, और उसमें से ये चौथा प्रावृत, उसका नाम है कर्म प्रवृत्ति, कर्म प्रकृति, और उसमें ये 24 संयोग द्वार होते हैं। अब वही बात यहां बता रहे 184 पर, कर्म प्रकृति प्रावृत के ये चारों ही अवतार, अवतार यानी ग्रंथ की शुरुआत होती है, ये चारों अवतार यानी उपक्रम निक्षेप अनुगम और नय इस देशामर्शक सूत्र के द्वारा प्ररूपित किए गए। कौन सा देशामर्शक सूत्र? जो 45 नंबर का हमने 134 पेज पर देखा था, वहां से बात चली आई थी और उसका यहाँ विस्तार होकर उन्होंने बताया। वह इस प्रकार से अग्रायणी पूर्व की पंचम वस्तु के, ये पंचम वस्तु का नाम क्या बताया आपको? चयन लब्धि। वस्तु ने पदार्थ नहीं हो, ये उसके जो चैप्टर है उसको वस्तु कहते हैं। मैंने कौन से पूर्व में कितनी वस्तु है वो सब निश्चित उसकी संख्या होते हैं। पंचम वस्तु के चतुर्थ प्रावृत का नाम कर्म प्रकृति है, यानी एक एक वस्तु में इतने इतने प्रावृत हो गए और एक एक प्रावृत में इतने इतने अनुयोग द्वार हो गए, ये कर्म प्रकृति उसका नाम है। उसमें ये 24 अनुयोग द्वार जानने योग्य है, वो 24 के नाम भी वहां हमने उस सूत्र में देखे थे 45, कृति वेदना स्पर्श कर्म प्रकृति बंधन वगैरह वगैरह वो सब हमने देख लिए है ना। इस प्रकार इस समस्त ही सूत्र के द्वारा 5 प्रकार के उपक्रम की प्ररूपणा की गई है। 5 प्रकार का उपक्रम देखा ना हमने, अनुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता और अर्थाधिकार, क्योंकि उन्होंने सब कितनी 24 संयोग द्वार ज्ञातव्य वो सब अर्थाधिकार भी बता दिए, सब कुछ आ गया इसके अंदर। यह उपक्रम शेष 3 अवतारों का उपलक्षण है, यानी उसमें वो समझ में आ सकती बात ऐसी है, क्योंकि कौन सा उपक्रम है, कितने अनुयोग द्वार है, क्या है अर्थाधिकार वगैरह बता दिया, तो उसी में बाकी चीजें जानने में आती है, ये उसका अर्थ होता है। अतएव उन्हें भी यहां देखना चाहिए, क्योंकि यह उनका अविनाभावी है। तो कहते उसको बता रहे, यह अग्रायणी पूर्व ज्ञान श्रुत अंग दृष्टिवाद वो पूर्वगत के अंतर्गत होने से 6 प्रकार का है। देखो ये 12वां अंग जो दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है वो किसमें आता है? श्रुत ज्ञान का वो भेद है ना, और ज्ञान के भेदों में श्रुत ज्ञान को कहते हैं, और श्रुत ज्ञान के भेदों में ये जो दृष्टिवाद अंग को बताते हैं, ये अंगों को बताए, क्योंकि हमने 12 अंग होते हैं, तो 12वें अंग में से वो दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है, और उसमें 12वें अंग में भी 14 पूर्व होते हैं, तो उसमें का ये अग्रायणी पूर्व उसकी बात है, यानी वो इतना बताने से उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, ये कहना चाहते हैं। अंतर्गत होने से 6 प्रकार है, अभी विशेषार्थ में खोलेंगे और उसको, क्योंकि ज्ञानादिकों से पृथकभूत अग्रायणी पूर्व का अभाव है, यानी ये केवल वो शास्त्र नहीं लेना, ग्रंथ नहीं लेना, उस संबंधी ज्ञान लेना यहाँ पर, इसलिए शिष्यों की बुद्धि को विकसित करने के लिए उक्त 6 के 4 प्रकार का अवतार कहते हैं। अभी देखें ना, ज्ञान है, श्रुत है, अंग है, दृष्टिवाद है, पूर्वगत है, अग्रायणी है, इन सब का भी यहाँ विस्तार करेंगे। यहाँ अग्रायणी पूर्व का उद्गम इस प्रकार बतलाया है, उद्गम यानी उसके कैसे हुआ, यहाँ बताए ना ऊपर ये 6 प्रकार का कैसे बताया उन्होंने, तो कहते हैं मति श्रुत अवधि मन परे व केवल से भेद से, केवल के भेद से ज्ञान 5 प्रकार है, जब कहते समय ज्ञान प्रमाण है, तो ये 5 प्रकार का ज्ञान है। इनमें श्रुत ज्ञान मुख्य है, क्योंकि अग्रायणी पूर्व से उसका ही संबंध है। अग्रायणी पूर्व कहने से उसमें से क्या क्या बातें निकलती है ये बता रहे। तो यहाँ मति ज्ञान की बात की, पांच प्रकार के ज्ञानों में से श्रुत ज्ञान की मुख्यता है, क्योंकि उसी का वो अग्रायणी पूर्व उसी का भेद है। तो कहते हैं श्रुत ज्ञान को ले लिया, पहले ज्ञान को लिया फिर श्रुत ज्ञान को लिया। अब वह श्रुत ज्ञान अंग श्रुत और अनंग श्रुत के भेद से दो प्रकार है। अंग श्रुत यानी जिसको हम कहते हैं 12 अंग, और अंग बाह्य जिसको कहेंगे, जिसी को यहाँ अनंग कहा, अनंग अंग और अनंग जिसको कहा, जिसको हम कहते हैं ना प्रत्येक अंग में कितने क्या पद है वगैरह उसका वर्णन आता है, और जो कुछ अक्षर बचे उसमें से 24 अंग बाह्य की रचना होती है। उनमें उक्त कारण से ही अंग श्रुत मुख्य है। देखो क्योंकि अग्रायणी पूर्वी अंग का भेद है, तो पहले हमने वो ज्ञान का भेद है कहा, वो ज्ञान में से श्रुत ज्ञान का भेद है, श्रुत ज्ञान में से वो अंग का भेद है, ये नक्की हो गया। वह भी आचार अंगादि के भेद से 12 प्रकार है, क्योंकि 12 प्रकार के अंग है, तो उनमें से कौन सा वाला अंग लेना, तो इनमें 12वां दृष्टिवाद अंग मुख्य है जो 5 प्रकार का है। यानी दृष्टिवाद अंग के 5 उसमें भेद है, अलग अलग विषय उसके। एक है परिक्रमा जो गणित संबंधी है, फिर सूत्र कॉमा लगा लो, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। पूर्वगत यानी जो 14 पूर्व है उसको पूर्वगत कहते हैं। इनमें पूर्वगत विषय विवक्षित है, ऊपर बताया था ना, देखो ऊपर के पैराग्राफ में नीचे से चौथी लाइन थी, यह अग्रायणी पूर्व ज्ञान श्रुत अंग दृष्टिवाद पूर्वगत के अंतर्गत होने से। ये पहला भेद लिया ज्ञान, ज्ञान को 1 नंबर दिया हमने, श्रुत को 2 नंबर, अंग को 3 नंबर, उसी का वो दृष्टिवाद ये भेद है ये 4 नंबर, और उसी में दृष्टिवाद में पूर्वगत नाम का भेद है इसको 5 नंबर दिया, और पूर्वगत में अग्रायणी पूर्व है उसको हम 6 नंबर देंगे वहां पर। इनमें पूर्वगत विवक्षित है क्योंकि उसके उत्पाद पूर्व आदि 14 भेदों में द्वितीय अग्रायणी पूर्व ही है। ये 14 पूर्व जो है 12वें अंग में जो 14 पूर्व है, पहला उत्पाद है, दूसरा अग्रायणी है वगैरह वगैरह, तो उसमें अग्रायणी पूर्व की यहाँ बात है। अतएव अग्रायणी पूर्व से संबद्ध होने के कारण, उससे रिलेटेड होने के कारण, यहाँ क्रम से ज्ञान श्रुत ज्ञान अंग श्रुत दृष्टिवाद अंग पूर्वगत और अग्रायणी पूर्व के उपक्रमादि 4 प्रकार अवतार के कहने की प्रतिज्ञा की गई। समझ में, अग्रायणी पूर्व कहने से उसमें ये बातें इतनी नक्की हो जाती, उसका ये 6 उसमें से समझ में आती है बात। यहाँ बताए सूत्र के द्वारा उसका उपक्रम भी, उसकी प्ररूपना भी ख्याल में आ जाती है, वो यहाँ बता दी उन्होंने। उपक्रमादि 4 प्रकार अवतार के ग्रहण करने कहने की प्रतिज्ञा की है। अब वह इस प्रकार है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से ज्ञान 4 प्रकार है। देखो क्या कहना चाहते हैं, पहले उन्होंने उपक्रम में ये जो ज्ञान की इतनी सब बातें बताई उन्होंने अग्रायणी पूर्व कहने से, उसमें वो 6 बातें आ गई, कौन सी, ज्ञान श्रुत ज्ञान अंग श्रुत वगैरह वगैरह वगैरह। अभी उस हरेक के ऊपर वो निक्षेपादि लगाएंगे। देखो क्या कहते हैं, उपक्रमादि 4 प्रकार के अवतार कहने की प्रतिज्ञा की है, तो उसमें भी उपक्रम, हमने कि उपक्रम कहते हैं, निक्षेप कहते हैं, अनुगम कहते हैं, और अर्थाधिकार कहते हैं, वो सब इसमें लगाएंगे। पढ़ते देखो, वह इस प्रकार है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से ज्ञान 4 प्रकार का है। इनमें आदि के 3 निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के आश्रित है। हमने नाम किसका रख रहे हैं, तो द्रव्य का, स्थापना एक द्रव्य में अन्य द्रव्य की, वहां भी द्रव्य को ही विषय किया जा रहा है, और द्रव्य निक्षेप जो है उसी द्रव्य को हम देख रहे हैं, उसकी भूत भावी पर्याय भी उसमें इंक्लूड करके हम देख रहे हैं, तो इस तीनों ही द्रव्य को ही विषय कर रहे हैं, इसलिए उसको द्रव्यार्थिक नय का विषय कहेंगे। यानी इसमें निक्षेप करके उसमें नए भी बता रहे, कौन सा निक्षेप किसने का विषय है वो भी बता चुके, क्योंकि उन तीन के अन्वय देखा जाता है। अन्वय ने कंटिन्यूटी देखी जाती है, यानी द्रव्य जो कायम रहने वाला उसको हम देखते हैं उसमें। द्रव्यार्थिक नहीं किसको कहते, वो नित्य अंश को देखता है। भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय के निमित्त से होने वाला है। भाव निक्षेप का अर्थ क्या होता है, निक्षेप यानी वस्तु में, और उसको जानने वाला तो नय है। तो वस्तु कौन सी लेती हम, उस पर्याय रूप से परिणत वस्तु को ले रहे, और उसको जानने वाला है वो तो पर्यायार्थिक नय होगा, पर्याय को विषय करने वाला नय। उस नय का विषय क्या है, वहां पर निक्षेप है। कौन सा निक्षेप है, तो ये भाव निक्षेप जो है यहाँ। इसलिए क्या कहा लास्ट लाइन में, भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय के निमित्त से होने वाला है। देखो निक्षेप वस्तु में रखे जाते हैं, किए जाते हैं, और नय तो ज्ञान के अंश है। वो निक्षेपों को जानने वाला वो नय है। अभी हमने क्या देखा था, नाम यानी नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप, ये द्रव्यार्थिक नय के विषय है या उसके वो आश्रित है, ऐसा भी कहेंगे। और ये जो भाव निक्षेप है वो पर्यायार्थिक नय के निमित्त से होता है, उसके आश्रित होता है, ऐसा हम कहेंगे। क्योंकि वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को, उपलक्षित यानी उस पर्याय से परिणत द्रव्य को, उस सहित वाले द्रव्य को भाव स्वीकार किया गया है। भाव स्वीकार किया गया ना, उसको भाव कहते हैं। यहाँ लिखा ना भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय के निमित्त से होने वाला, यानी वो जो पर्यायार्थिक है ना वो तो उस पर्याय को विषय करने वाला है, उस रूप परिणय में द्रव्य लेना है। और वो भी कैसा, वर्तमान द्रव्य निक्षेप में उसके सभी पर्याय उसी द्रव्य के अंतर्गत होने से, विषय तो हम द्रव्य को करते हैं, वो पर्याय उसमें इंक्लूड कर देते हैं। हमेशा हम कहते हैं श्रेणिक राजा हमारे क्या भावी पहले तीर्थ, अरे वो श्रेणिक राजा तो भूतकाल में था और तीर्थंकर तो भविष्य काल में होने वाले, अभी तो वर्तमान में तो नरक में है, परंतु द्रव्य वही का वही है। इसलिए ये कहने की पद्धति है वो द्रव्य निक्षेप होता है। इन्हों द्रव्यार्थिक नय से हम कहेंगे, हम उस द्रव्य को देख रहे कि वही का वही द्रव्य है। और भाव निक्षेप से देखेंगे तो अभी वर्तमान में पहले नरक के नारकी है, ये उनका भाव निक्षेप है, कहा भी है। नामं ठवणादवियं तिये सदवट्ठिय सनिखेयो भावोदुपजवट्ठिय परूवणा एस परमठो। यही बात बताएं है, नाम, नाम हमने देखा, ठवणा यानी स्थापना, दवियम यानी द्रव्य, ये निक्षेप के भेद है ना तीन, ती एस दौवठ्यस निक्षेवो, द्रव्यार्थिक के वो निक्षेप है। भावो दो पज्जवट्ठी है परूवणा एस परमठो, और भाव जो है पर्यायार्थिक उसकी प्ररूपना है। अब देखते हैं नीचे उसका अर्थ है, नाम स्थापना और द्रव्य ये तीन द्रव्यार्थिक नय के निक्षेप है, यानी उनको विषय करने वाला वो द्रव्यार्थिक नय है। किंतु भाव पर्यायार्थिक नय का निक्षेप है, यानी ऐसा हम पढ़ेंगे नाम निक्षेप स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप ये द्रव्यार्थिक नय के विषय है, और भाव निक्षेप ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। यह परमार्थ सत्य है, परमठो लिखा ना, ये परमार्थ है यानी सही है, यही बात तिकाल सत्य है। अब निक्षेप का अर्थ कहते हैं, देखो पहले तो ये सब बता चुके हैं, परंतु ज्ञान शब्द पर हमको ये सब लगाना है, इसलिए यहां फिर दोबारा उसकी बात उठाई। नाम ज्ञान अपने आप में रहने वाला ज्ञान शब्द है। हम ज्ञानचंद नाम होता है कि नहीं, अब उसके आगे गिचंद लगा लो, लाल लगा कुछ, पर ज्ञान नाम लिखा है, रखा है ना, तो ये नाम निक्षेप हो गया। समझ में आती है ना, जीव शब्द, जीव भी नाम रखते कि नहीं, तो फिर आगे जीव राज या ऐसा कुछ लगाएंगे, तो जीव तो उनका नाम रखा। तो नाम ज्ञान अपने आप में रहने वाला ज्ञान शब्द है, वह यह है इस प्रकार अभेद से संकल्पित सद्भाव असद्भाव रूप अर्थ स्थापना ज्ञान है। स्थापना ज्ञान किसको कहेंगे? तो हमने कोई चीजें रखी, हाँ, तो हम कहेंगे ये मति ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान है, ऐसा हमें समझाने के लिए कुछ भी कह सकते। किसी एक वस्तु में अन्य की स्थापना करना, तो किसी चीज में ये ज्ञान है ऐसा कह देना, ये उसका स्थापना निश्चित है। वो तदाकार तदाकार यानी वो जीव के आकार रूप, इस तरह से हम उसको कहेंगे। द्रव्य ज्ञान आगम और नवागम के भेद से दो प्रकार के। हमने आगम और नवागम जरा फिर रिपीट करते हैं। द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए थे, आगम और नवागम। अभी ज्ञान संबंधी जो आगम है, ज्ञान को विषय करने वाले जो आगम है, उसको जानने वाला जीव, पर अभी वर्तमान में उसमें उपयुक्त नहीं है, उसको क्या कहेंगे? आगम द्रव्य निक्षेप। द्रव्य इसलिए कहा कि वो भूत भविष्य में उसकी पर्याय, इसलिए वो द्रव्य कह दिया उसको। द्रव्य वही का वही है, इसलिए उसको आगम द्रव्य निक्षेप कह दिया। और नो आगम में नहीं जानने वाला, नहीं जानने वाला कौन होगा? उस जीव का शरीर, या वही जीव जो भविष्य में जानेगा, अभी नहीं जान रहा है, या इनके अलावा अन्य कुछ। तो शरीर में भी भूतकाल का छोड़ा हुआ शरीर, वर्तमान का शरीर, या भविष्य काल में आगामी भव का शरीर, इसको भी लेते हैं। उसमें भी और भेद करते हैं, किस रूप से छोड़ा था, पहले त्यक्त चुत चावी तो त्यक्त ऐसे, इसलिए अभी उसमें चर्चा में नहीं जाएंगे। अभी यहाँ क्या लिखते हैं वो देखते हैं। देखो क्या कहा यहाँ पर, तीसरी लाइन निक्षेप के नीचे की, द्रव्य ज्ञान, द्रव्य ज्ञान ये शब्द है ना, यहाँ पर द्रव्य निक्षेप लगा रहे ज्ञान, इस शब्द पर हम द्रव्य निक्षेप लगा रहे, इसलिए उसको द्रव्य ज्ञान कहा। वो यानी द्रव्य ज्ञान यानी कुछ आगम वगैरह ये नहीं लेना कि ये शास्त्र को द्रव्य ज्ञान कहे, वो बात नहीं, वो तद व्यतिरिक्त में कहेंगे, उसकी बात अलग है। अभी द्रव्य ज्ञान यानी द्रव्य निक्षेप लगा रहे ज्ञान शब्द पर, तो वो आगम और नवागम के भेद से दो प्रकार का है। ज्ञान प्रावृत का जानकार, इसको ज्ञान प्रावृत कहेंगे, जो आगम उस संबंधी जो आगम है उसको ज्ञान प्रावृत कहेंगे। तो ज्ञान प्रावृत का जानकार उपयोग से रहते नहीं, उसके उपयोग से रहित, क्योंकि नहीं तो उपयोग से रहित कोई जीव ही नहीं होता है। उसका ज्ञान प्रावृत में उपयोग नहीं है, इसलिए उपयोग उसके शब्द डालो वहां पर। आपके उसमें लिखा है क्या? अच्छा, ऊपर प्रकृत में नहीं, नान पाहुड़ जानो अणुवजुत्तो, परंतु अनुपयुक्त है ना, उसमें उपयोग रहित ऐसा लेना। तो ज्ञान प्रावृत का जानकार उसके उपयोग से रहित जीव आगम द्रव्य ज्ञान है। द्रव्य ज्ञान यानी द्रव्य निक्षेप से उसको ज्ञान कह रहे, किसको? जीव को। कौन सा जीव? जिसने ज्ञान प्रावृत को जाना है, तो अभी वर्तमान में उसमें उसका उपयोग नहीं है। हो सकता है भगवान की भक्ति कर रहा है, हो सकता है कि अन्य शास्त्र अन्य प्रावृत पढ़ रहा है, हो सकता है कि ग्रह से संबंधी कुछ विकल्प है उसके। क्योंकि यहाँ नयगम नय का अवलंबन है। नयगम नय, न एकम वो नयगम, यानी अन्य पर्यायों के साथ वर्तमान उस द्रव्य का उपचार कर रहे, इसे उसको नयगम कहते हैं। ज्ञायक शरीर भव्य और तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य ज्ञान के भेद से नो आगम द्रव्य ज्ञान तीन प्रकार का है। देखो हमने कौन सा देखा? आगम द्रव्य ज्ञान, वो जीव को कह रहे जो ज्ञान प्रावृत का जानने वाला है, उसमें उपयोग नहीं है। नो आगम द्रव्य ज्ञान किसको कह रहे हैं? उसमें तीन प्रकार बताए, ज्ञायक शरीर, भव्य ने जीव जो भविष्य में जानेगा, और इनको छोड़कर अन्य, ना जो शरीर भी है ना जीव भी है, ऐसे उसके तीन प्रकार बताए। ज्ञायक शरीर और भव्य नो आगम द्रव्य ज्ञान ये दो सुगम है। सुगम है क्योंकि ज्ञायक शरीर में वो जीव के जानने वाले जीव का शरीर लेना, भूत भविष्य या वर्तमान का, भव्य में जीव लेना जो भविष्य में जानेगा, ये तो आसान है, ये तो सुगम है, क्योंकि इनकी प्ररूपना बहुत बार की गई है। यानी द्रव्य निक्षेप के ये भेदों की चर्चा बहुत बार हुई है, पर जहाँ तद्व्यतिरिक्त आता है उसमें एग्जैक्टली यहाँ क्या समझना, उसकी बात अभी बताएंगे। अब कहते ज्ञान की हेतुभूत पुस्तक आदि द्रव्य तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य ज्ञान है। जो हम शास्त्र को श्रुत कहते हैं, द्रव्य श्रुत कहते हैं, तो द्रव्य श्रुत का अर्थ क्या है? तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य श्रुत। श्रुत तो ज्ञान का भेद है, ये हमारे श्रुत ज्ञान का भेद है, परंतु उपचार किसको द्रव्य श्रुत कह रहे हैं? द्रव्य श्रुत कहने से उसमें आगम द्रव्य श्रुत हो जाएगा, नो आगम द्रव्य श्रुत होगा। नो आगम में ज्ञायक शरीर भी होगा, भव्य भी होगा, तद व्यतिरिक्त भी होगा। ये तद व्यतिरिक्त का एक भेद हो जाएगा, ध्यान में, उसको हम द्रव्य श्रुत कह रहे हैं। उसके पीछे तद व्यतिरिक्त, नो आगम, द्रव्य श्रुत, ये पूरा नाम बताएंगे तो ये, हाँ, ये उसको द्रव्य श्रुत कहना हमारा प्रयोजन है। फिर से देखो, ज्ञान की हेतुभूत पुस्तक आदि द्रव्य कैसा है? वो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य ज्ञान है, उसको भी ज्ञान कह दिया हो। अभी तो श्रुत तो आगे जाके बताएंगे, अभी तो केवल उसको मात्र उसको ज्ञान कह रहे हैं, द्रव्य ज्ञान कहेंगे। कौन सा? तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य ज्ञान। किसको कहा? पुस्तक को, क्योंकि वो हमारे ज्ञान में निमित्त हो गए, तो इस पुस्तक को भी कह दिया। ज्ञान प्रावृत का जानकार, अभी भाव की बात है, भाव निक्षेप, उसमें उपयोग वाला लेना है, तो उसमें भी भाव निक्षेप में भी दो भेद होते हैं, आगम और नो आगम। तो ज्ञान प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव भाव आगम ज्ञान है। उपयोग युक्त ने उसमें उपयोग होना चाहिए, या उसके उपयोग युक्त, जैसे ऊपर हमने देखा था उसमें अनुपयुक्त ने उपयोग से रहित दिया था तो उसका उपयोग नहीं था, वैसे यहाँ पर उसमें उसका उपयोग है। उस जीव को क्या कहेंगे? भाव आगम ज्ञान कहेंगे, क्योंकि जीव उस पर्याय से परिणत है। यहाँ भाव आगम ज्ञान प्रकृत है, क्योंकि शेष ज्ञानों की यहाँ संभावना नहीं है। क्या कहा? यहाँ जीव को ही ज्ञान कह रहे ना, भाव आगम ज्ञान। जीव उस, क्योंकि आगम, आगम क्यों कहा उसको? ज्ञान में श्रुत ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान में 12 अंग, 12 अंगों में दृष्टिवाद, दृष्टिवाद में पूर्वगत, पूर्वगत में अग्रणी, तो उसका जानकार जीव और उसी में उपयोग वाला जीव लिया है यहाँ पर, हाँ, इसलिए उसको यहाँ पर भाव आगम कहा। यहाँ भाव आगम ज्ञान प्रकृत है, प्रकृत यानी वर्तमान में वो अंदर हमारे विषय है, क्योंकि शेष ज्ञानों की यहाँ संभावना नहीं है। शेष ज्ञान यानी नाम, स्थापना, द्रव्य वगैरह की चर्चा नहीं है, भाव की बात है। इसके द्वारा नय और निक्षेप दोनों की प्ररूपना की गई है। क्या कहा? इतना कहने से ये उपक्रम बताने ना, यहाँ वो ज्ञान या कहने से अग्रणी का वो अमुक अमुक भेद है कहने से, तो उसमें नय भी बता दिए और निक्षेप भी बता दिए। हमने देखा था उपक्रम होता है, उसमें तो नाम भी है, नय भी है, निक्षेप भी है, और उसके अर्थाधिकार भी बताते हैं, अनुगम भी होते हैं, ये सब उसके अंदर बताना है। अनुगम की भी प्ररूपना की गई है, वो सूत्र में अनुगम भी बताया है, क्योंकि उसका ही अधिकार करके नय और निक्षेप की प्ररूपना की गई है। यहाँ अनुपूर्वी नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार के भेद से 5 प्रकार उपक्रम कहा जाता है। यानी यहाँ अभी उपक्रम उसका बताते हैं, पहले उसके निक्षेप और वो उसका भी कथन बता चुके हैं। उनमें अनुपूर्वी की यहाँ संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्ञान के एकत्व की विवक्षा है, यहाँ ज्ञान के भेदों की विवक्षा नहीं है, बस ज्ञान कहना है। मतिश्रुत अवधि वो यहाँ का विषय नहीं है, इसलिए उसमें कोई क्रम नहीं होता, इसलिए अनुपूर्वी नहीं होगी। अनुपूर्वी कहाँ होती है? जहाँ अनेक चीजें बतानी है, तो उसमें सही यानी सीधे क्रम से बताना है कि उल्टे क्रम से बताना है कि बीच में कम किसी की भी बात बताने, वो बात आती है। इसलिए यहाँ अनुपूर्वी में वो कथन किस प्रकार हो रहा है वो यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि एक ही बात है। चूंकि इससे जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं, अतः ज्ञान यह गुण नाम है। जब ज्ञान, वो ज्ञान अभी किसी आदमी का ज्ञान रखा, वो नाम निक्षेप वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ तो ज्ञान, ये जो बात हो रही है, तो ज्ञान कहते वो जीवादि पदार्थ उससे सिद्ध होते हैं। ज्ञान कहने से जीव है ये सिद्ध हो जा रहा है, इसलिए वो ज्ञान, ये नाम कैसा है? गुण नाम। जीव का वो गुण है, उससे वो गुण के आधार से जीव को भी हम ज्ञान कह सकते हैं, है ना। प्रमाण एक ही है, क्योंकि यहाँ संग्रह नय का अवलंबन है। ज्ञान कहने से सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए संग्रह नय का विषय है। अथवा प्रमाण अनंत है क्योंकि ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण है, अर्थात जितने अनंत ज्ञेय है उतने ही ज्ञान भी है। क्या कहते हैं, ज्ञान का दो प्रकार से हम बताते, उसका प्रमाण, ज्ञान का प्रमाण कितना है तो कहते एक ज्ञान एक है, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भेद नहीं कर रहे। या दूसरी तब पद्धति से अगर ज्ञान कितना होता है तो अनंत होता है, जितने ज्ञेय है उतने ही ज्ञान है, जितने प्रकार के ज्ञेय है उतने प्रकार के ज्ञान है, इसलिए उसको अनंत कहा। वक्तव्य क्या है, वक्तव्य इसके स्व समय और पर समय है, क्योंकि जो स्व अपना जो कथन करना और पर का निषेध उसी में हो जाता है, तो दोनों है। मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान के भेद से अधिकार पांच है, ज्ञान कहने से उसके ये पांच भेद हो गए, पांच अधिकार हो गए। बाद में जब हम आगे वाला श्रुत ज्ञान कहेंगे तो उस पर ये सब लगाएंगे, ये नाम निक्षेप उस पर लगाएंगे, पहले यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान के ऊपर हम उपक्रम लगा रहे हैं, उसका नाम बता दिया, अभी उसमें अनुगम बताएंगे, नए निक्षेप सब यहाँ बता रहे हैं ना, तो उस पर ये बात हो रही है। देखो ज्ञान शब्द पर ये सब बातें चल रही है। तो ज्ञान कहने से उसके पांच अधिकार होते हैं, आगे न वे अधिक है और न कम भी, क्योंकि यहाँ व्यवहार नय का अवलंबन है। यानी वो अधिकार यहाँ अर्थाधिकार पांच ही हो गए, क्योंकि ज्ञान कहने से पांच प्रकार के ज्ञान है और ये पांच हो गए। यहाँ व्यवहार नय का अवलंबन होने से, यानी भेदों का कथन करना है, ज्ञान के कितने भेद है उतने उसके अर्थाधिकार बताएं। अब श्रुत ज्ञान की मुख्यता से चार प्रकार का अवतार कहते हैं। फिर से पहले ज्ञान की अपेक्षा बताया, ज्ञान यह नाम ज्ञान है, स्थापना किसी पदार्थ में करना वो स्थापना ज्ञान है। और फिर उन्होंने द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा बताए थे, वो तीनों द्रव्यार्थिक के विषय किए थे, और भाव ज्ञान उस जीव को किया था, उस रूप से परिणत भाव आगम ज्ञान कहा था, ज्ञान प्रावृत को जानने वाला उसी में उपयुक्त जीव लिया था वहाँ पर, बाकी तो चर्चा हमने देख ली। अब वो ज्ञान का एक भेद यहाँ लेना श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान शब्द पर वो सारे ही उपक्रम उसके नाम वगैरह सब लगा लेंगे, उसका नाम बताना, उसके अनुपूर्वी बताना, उसका प्रमाण बताना, वक्तव्य बताना, अर्थाधिकार बताना, ये सब उसमें लगाना है। अब श्रुत ज्ञान की मुख्यता से चार प्रकार का अवतार कहते हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव श्रुत के भेद से। यानी वो श्रुत शब्द हर एक को लगाना, नाम श्रुत, स्थापना श्रुत, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। श्रुत ज्ञान चार प्रकार का है, इनमें आदि के तीनों ही निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के हैं। और भाव और श्रुत किसको कहेंगे, उस रूप से परिणत, श्रुत प्रावृत को जानने वाले उसमें परिणत, उसमें उपयुक्त जीव लेना, वो भाव श्रुत कहेंगे उसको। शंका, नाम द्रव्यार्थिक नय का निक्षेप कैसे है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिक नय में क्षणक्षयी होने से, वो हो बराबर लिखना, शब्द और अर्थ की विशेषता से संकेत करना न बनने के न सकने के कारण वाच्य वाचक भेद का अभाव है। क्या कहते हैं, पर्यायार्थिक नय पर्याय को विषय करता है, और वो पर्याय ने एक एक समय की पर्याय हम मान लेते हैं, तो क्षण स्थायी है, तो हम उसको उसी नाम से उसका कैसा कथन करेंगे। तो किसी का नाम रखा हमने बच्चे को, और वो क्षण 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 दूसरा दूसरा अगर वो पर्याय की तरफ से देखेंगे तो नहीं सूट होगा, तो हमें वही बच्चा है थ्रू आउट, तो वही नाम उसका रखते हैं। तो नाम तो उसी में रखा जाता है कि जो कुछ काल तक तो रहेगी ना चीज, ये कह रहे हैं कि पर्यायार्थिक नय में क्षणक्षयी होने से, क्षणक्षयी ने क्षण में नष्ट होना, क्योंकि पर्याय एक समय को विषय करती है, शब्द और अर्थ की विशेषता से संकेत करना न बनने से, शब्द और अर्थ, शब्द यानी जो हम जिस शब्द से वो अर्थ को बता रहे हैं, हमने किसी वस्तु को बताना है तो हम शब्द से बताते, वाच्यवाचक है ना उसमें, परंतु अगर वो क्षण में वो चीज बदल जाए तो नाम उसको लिए कैसे लागू होगा, ये कहना चाहते हैं, जो पलट जाए उसको नाम कैसे लागू होगा, जो क्षण क्षण में चेंज हो रही है। तो पर्यायार्थिक में क्षण क्षय होने से शब्द और अर्थ की विशेषता से संकेत करना न बन सकने के कारण वाच्य वाचक भेद का अभाव है। यानी सोना है वो द्रव्य है तो उसको हम बंगड़ी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो बंगड़ी बदल कर हार हो जाए उसका करेंगे तो वो नाम कहाँ रहा। यहाँ तो बहुत लंबे काल तक वो रहता है, परंतु हमें तो यहाँ क्षण क्षण वाली पर्याय को विषय करना है, इसलिए वो वहाँ नहीं बन सकता। इसलिए क्या कहते हैं, नाम निक्षेप जो है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, क्योंकि वो द्रव्य का वो नाम रखा दिया जाता है, पर्याय का वहाँ विषय नहीं कर रहा। जैसे बालक है और हमने वो बालकपने को नाम नहीं रखा है, हमने वो व्यक्ति का नाम रखा है, तो वो बालक बड़े होने पर वही नाम रहता है उसका, तो उसने किसको विषय किया, वो द्रव्य को विषय किया, द्रव्यार्थिक नय है वो। शंका, तो फिर तीनों ही शब्द नयों में शब्द का व्यवहार कैसे होता है। यहाँ क्या कहते हैं, ये प्रश्न क्यों पूछा, देखो थोड़ा ये पहले की बात याद करते, नाम स्थापना और निक्षेप कौन से, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप उसकी बात, और भाव निक्षेप अलग है। अब सात नयों की भाषा में अगर बोलेंगे तो कौन कौन से, नैगम नय, नैगम नय तो द्रव्य पर्याय दोनों को विषय करता है, परंतु दूसरे जो कौन से उसको भी हम द्रव्यार्थिक नय कहेंगे, संग्रह नय, व्यवहार नय, ये तीनों ही कैसे द्रव्यार्थिक नय है। फिर ऋजु सूत्र, शब्द समविरूढ़ और एवं भूत पर्यायार्थिक नय के विषय, पर्यायार्थिक नय है वो, विषय भी नहीं पर्यायार्थिक नय है। तो यहाँ प्रश्न क्या बताया, तो फिर तीनों ही शब्द नयों में, तीन शब्द नय कौन से, ऋजु सूत्र है या शब्द से जो शुरू होते हैं, शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, वो सारे शब्द नय है। फिर से देखो, देखो ऐसा नहीं कर, मैं फिर बताती हूँ, जब हमको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक सात नयों में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भेद करना है तो नैगम संग्रह और व्यवहार द्रव्यार्थिक नय है। फिर ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत पर्यायार्थिक नय के विषय, उसमें से शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत ये द्रव्य नय है, ये सॉरी शब्द नय है, वो शब्दों की, शब्द कौन से यूज करना वो है उसका अर्थ है, वो शब्द नय है। अर्थ नय किसको कहेंगे, पदार्थ, पदार्थ भले वो द्रव्य रूप हो या पर्याय रूप हो, उसको विषय करने वाला वो अर्थ नय है। तो अर्थ नय में हम नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र को भी अर्थ नय कहेंगे, और शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत को शब्द नय कहेंगे। फिर से देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ ऊपर क्या बताया, पर्यायार्थिक नय में ऊपर का समाधान, क्षण क्षयी होने से शब्द और अर्थ की विशेषता से संकेत करना न बनने के साथ वाच्य वाचक भेद का अभाव है। यहाँ कहते हैं पर्यायार्थिक नय में वाच्य वाचक भेद का अभाव, ये बता चुके। अब पर्यायार्थिक नय चार है, उसमें से एक तो है ऋजु सूत्र, और बाकी तीनों ही शब्द नय वाले जो है, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, इसीलिए इसने प्रश्न तत्काल उठाया कि वो पर्यायार्थिक नय होते हुए भी शब्द नय में आते हैं। तो कहते तीनों ही शब्द नयों में, तीन शब्द नय कौन से बताए, हाँ यानी शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। उसने प्रश्न क्यों उठाया जरा ख्याल में आए ना, क्योंकि आचार्य ने क्या कहा, पर्यायार्थिक नय और उसका वाच्यवाचक वो उसमें हो नहीं सकता, तो इन्हें तत्काल होता है वो भी पर्यायार्थिक नय है, कौन से शब्द समविरूढ़ वो पर्यायार्थिक है और उसमें शब्द की मुख्यता है, और आप कह रहे वाच्यवाचक भेद नहीं हो सकता, उसके आधार से नहीं कह सकते हम, ये कैसे होगा, ये उनका कहना है। समाधान, नहीं, क्योंकि नहीं, अर्थगत भेद की अप्रधानता और शब्द निमित्तक भेद की प्रधानता रखने वाले उक्त नयों के शब्द व्यवहार में कोई विरोध नहीं है। क्या कहते हैं, अर्थगत भेद ने पदार्थों में कोई भेद नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे हमने देखा ना कि बालक पने का नाम नहीं रखा हमने, युवा पने का नाम नहीं, वो चीज जो द्रव्य का नाम रखा था। अब यहाँ कहते हैं कि जो नाम रख रहे हैं उसमें शब्दों के डिफरेंस है, वो अवस्था कौन सी क्या वो नहीं, शब्द के डिफरेंस है ना। जैसे इंद्र नाम दिया हमने, उसी को पुरंदर कहा, उसी को जो कुछ कहा, वो शब्दों के उसमें अर्थों में उसी जो कुछ जिस अर्थ में उसको ग्रहण करना है उसमें डिफरेंस पड़ता है। समभिरूढ़ में भी वो जो कौन सा शब्द उसमें हम लेते हैं उसमें वो व्यभिचार नहीं चाहिए लिंग का, वो शब्द में आता है, आगे आगे और स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो ये शब्दों के द्वारा उसमें भेद होते हैं, पदार्थ तो वही का वही है। यही कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थगत भेद की अप्रधानता, यानी वस्तु के भेदों की बात नहीं यहाँ लिखना है, और शब्द निमित्तक जो भेद है उसकी प्रधानता है। वस्तु को वही थी, वही की वही है, शब्दों के भेद से हम उसको वस्तु में भेद कर रहे हैं। रखने वाले उपनयों के शब्द व्यवहार में कोई विरोध नहीं है, ये तो उन्होंने नाम की बात बताई। अब कहते हैं स्थापना द्रव्यातिकने का विषय कैसे है, ये सब हम श्रुतक के ऊपर लगा रहे हैं, श्रुतक ज्ञान के ऊपर लगा रहे हैं। तो स्थापना निक्षेप भी जो है वो द्रव्यातिकने का विषय कैसे हो सकता है, ये उनका कहना। क्योंकि स्थापना में क्या कहते हैं, एक किसी द्रव्य में अन्य वस्तु की स्थापना करते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि अर्थ का उसके द्वारा ग्रहण होने पर स्थापना बन सकती। क्या कहना चाहते, कोई चीज का हम ये स्थापना व्यवहार जो हम मंदिर में देते भगवान की पूजा करते, तो क्या कहे, अर्थ का उसके द्वारा ग्रहण होने पर स्थापना बन जाती है। अर्थ का यानी जिसकी हमने स्थापना की, वो अर्थ, वो पदार्थ। महावीर भगवान की हमने वो मूर्ति में स्थापना की, तो अगर वो मूर्ति को देखकर हमें भगवान महावीर के पूरे गुण और उसकी जो कैसी अवस्था है उसका ज्ञान हो जाए, उसको हमने ख्याल में ले लिया, यानी उसके द्वारा हमने अर्थ का ग्रहण किया, भगवान की प्रतिमा देखकर हमने भगवान का स्वरूप ग्रहण किया, तो हमने वो स्थापना बराबर की। केवल हमने वो विधि मंत्रोच्चार किया, लोग इकट्ठे हुए, उसमें ये किया, वो क्या हो गई स्थापना, वो कहते नहीं। आचार्य कुनकुन भगवान भी वो बोध पाउड़ में कहते हैं, स्थापना अर्यंत किसको कहना, वहां तो कहते हैं कि जीव समास, यानी उस सारा उसके जो हमने 14 जीव समास, फिर उसके पर्याप्ति प्राण आदि सभी जो है जिस पर हम सारे मार्गणाएं वगैरह लगाते हैं, उसके द्वारा अर्यंत की स्वरूप के निश्चित करना, ये स्थापना अर्यंत है। अब यहाँ वही बात आई ना, अर्थ का उसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए, जिस पदार्थ की हमने स्थापना की है उसका हमारे ख्याल में आना चाहिए, हमारे ज्ञान में आना चाहिए, तब वो स्थापना सच्ची कहलाएगी, तब हमने वो स्थापना निक्षेप से उस चीज को जाना है। क्या कहते हैं, अर्थ का उसके द्वारा ग्रहण होने पर, अर्थ का ग्रहण ही नहीं हुआ और मात्र वो प्रतिमा कैसी है, काली है, बहुत सुंदर है, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, इतने फुट ऊंची है, बस हमने उसका इतना ही ग्रहण किया, तो हमने क्या जाना, हमने वो जिसमें स्थापना की उसकी विशेषता को जाना, जिसकी स्थापना की उसको तो कुछ नहीं जाना। नहीं समझे, पहले के जमाने में सुपारी रखी और वो तो स्त्री के बदले सुपारी रखी, सुपारी कितनी है, कितनी हाइट वाली है, 1 इंच की, इतनी बड़ी है, बहुत सुंदर है, कि वो स्त्री होगी कि उसमें जिसकी स्थापना की उसको हमको देखना है, वहां पर जिसमें स्थापना की गई उसकी विशेषताओं को वहां गौण करना है, जिसकी स्थापना की है उसके अगर भावों को उसके स्वरूप को समझेंगे तो हमारी स्थापना सच्ची है। बहुत अच्छा वाक्य है, तभी हम उसकी स्थापना निक्षेप हो गया, तभी उसका स्थापना हुई। यानी अर्थ का ग्रहण हुआ तो स्थापना हुई, ग्रहण होना यानी जानना। तो स्थापना हमने की, स्थापना बन सकती है, कहा ना, क्योंकि हम स्थापना करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, पंच कल्याणक मनाते हैं, तो स्थापना कब कहलाएगी, जब भगवान का स्वरूप हमने नक्की किया तो हमारी स्थापना नक्की हो गई। द्रव्य श्रुत ज्ञान भी, ये द्रव्य श्रुत ज्ञान कहने से द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा श्रुत ज्ञान लेना, देखो स्थापना स्थापना श्रुत ज्ञान, स्थापना श्रुत किसको कहना, ये नाम श्रुत पहले किसको कहना, किसी का नाम श्रुत कह देना, वो श्रुत नाम हो सकता है नहीं, कोई भी हो सकता है। अभी आजकल तो संयम भी रखते हैं, श्रुत भी रखते हैं, कुछ भी नाम तो कुछ भी रख सकते, वो तो नाम हो गया। फिर यहाँ स्थापना में किसी एक चीज में उसके वो अर्थ की संकल्पना करना, तो उसके सारे गुण उसके हमारे पता चल जाएगा, वो उसमें स्थापना का निक्षेप हुआ। अभी द्रव्य ने द्रव्य निक्षेप में, द्रव्य निक्षेप में हम देखते हैं आगम नो आगम, फिर ज्ञायक शरीर, वो सारे भेदों को अभी यहाँ बताएंगे किसमें लगाने, श्रुत ज्ञान के ऊपर। तो द्रव्य श्रुत ज्ञान भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है, क्योंकि आधार और आधेय के एकत्व की कल्पना होने पर द्रव्य श्रुत का ग्रहण होता है। अभी यहाँ तो सामान्य से द्रव्य श्रुत ने जो आगम ग्रंथ है उसको भी हम द्रव्य श्रुत कहते हैं, क्योंकि आधार और आधेय ये तो ज्ञान, ज्ञान तो हमारे में होता है और ये उसमें निमित्त है। तो जैसे हमने द्रव्य आगम द्रव्य नो आगम भेद किए थे, ऐसे यहाँ पर आगम किसको कहेंगे, वो जानने वाला जीव उसमें उपयुक्त नहीं है, और नो आगम में ज्ञायक शरीर भव्य तद्व्यतिरिक्त, तद्व्यतिरिक्त ही नहीं जो यहाँ वहाँ पर भी हमने ज्ञान में तो पुस्तकों ली थी, यहाँ द्रव्य श्रुत में भी यही लेना है, जो हमारे ग्रंथ है उसको हम तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य श्रुत कहेंगे। ख्याल में है इन बात? हाँ, भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का विषय है, यानी भाव श्रुत ज्ञान किसको कहेंगे, वो भाव श्रुत रूप से यानी श्रुत रूप से परिणत उस जीव को कहेंगे, श्रुत ज्ञान रूप से परिणत जीव को भाव श्रुत कहेंगे, उस जीव को भी भाव श्रुत ज्ञान कहेंगे। तो भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का विषय, हमने देखा ना उसने पर्याय को, पर्याय सहित वाले द्रव्य को वह विषय किया है, क्योंकि वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य का यहाँ भाव रूप से ग्रहण किया, उपलक्षित यानी वर्तमान पर्याय से युक्त वो द्रव्य लिया है। द्रव्य निक्षेप में वो पर्याय उसके भविष्य में होगी तो भी उसको इंक्लूड करते हैं, वो बात यहाँ नहीं है। निक्षेप का अर्थ कहते हैं, देखो कितने बार बताए, फिर हर बार इसकी रिपीटेडली ये बातें बता रहे हैं। नाम स्थापना तथा द्रव्य निक्षेप में आगम व नो आगम द्रव्य श्रुत ज्ञान सुगम है, क्योंकि बहुत बार उसकी नाम रखना, वो नाम द्रव्य श्रुत है या नाम श्रुत है, फिर स्थापना श्रुत है वगैरह वगैरह। विशेष इतना है कि श्रुत ज्ञान के निमित्त भूत गुरु और कवलिया, कवलिया ने ज्ञान का एक उपकरण आदि तद व्यतिरिक्त नो अगम द्रव्य शुद्ध ज्ञान है, ऐसा कहना चाहिए। देखो हमने देखा था द्रव्य निक्षेप के भेद क्या है, आगम और नो आगम। आगम में वो द्रव्य शुद्ध का जानकार जीव, उसमें उपयोग वाला नहीं है ऐसा जीव लिया। नो आगम में उसका ज्ञायक का शरीर लिया, वो भव्य जीव, वो भविष्य में जानने वाला लिया। और तद व्यतिरिक्त एक भेद है, तद व्यतिरिक्त में उसके निमित्त भूत गुरु लेना और अन्य जो कुछ उसके ज्ञान के उपकरण होंगे वो भी उसके अंदर ले लेना। श्रुत ज्ञान के उपयोग से युक्त पुरुष भाव श्रुत ज्ञान है, आज बात आई ना यहाँ पर, क्योंकि वो आगम और आगम का भाव, आगम की बात है वहां पर। इस प्रकार निक्षेप और नय की प्ररूपना समाप्त हुई। हमें लगता है पहले भी नय बताया, अभी भी नय, पहले तो उस निक्षेपों को विषय करने वाला वो नए ले, जैसे वहां पर भी नाम लिखा तो नाम को जानने वाला नए लेना है वहां पर, नाम नए स्थापना यानी स्थापना को जानने वाले नए को वहां लिया था, और यहाँ निक्षेपों की बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान प्रमाण है, प्रमेय नहीं है, क्योंकि अर्थ का यहाँ अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं, प्रमाण है प्रमेय नहीं का अर्थ क्या, यहाँ ज्ञान कहने से ज्ञान की बात है, प्रमेय नहीं है यानी ज्ञेय की बात नहीं है, इसलिए श्रुत ज्ञान कहने से वो उसके जो भेद प्रभेद बताए हैं या जो द्रव्य श्रुत के भेद बताए वो बात यहाँ नहीं हो रही, वो ज्ञान की बात हो रही है। अनुगम की प्ररूपना समाप्त हुई, अनुगमेनिस वो तो बताया था ना, अनुगम यानी उसमें क्या क्या बताते हैं हम, वो अर्थाधिकार वगैरह सब बताते हैं ना अनुगम। यानी उपक्रम तो अनुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता और अर्थाधिकार हो गया था, यानी वो उपक्रम हुआ। फिर निक्षेप देखे हमने, नए देखे, और अनुगम। अनुगम में हमने देखा था कि उसका जो हाँ ज्ञान की बात हुई थी ना, अनुगम जिसके द्वारा वक्तव्य की प्ररूपणा की जाती है। यानी पद मीमांसा उसके जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं उसको अनुगम कहा हमने, द्रव्य प्रमाणानुगम, काल अनुगम, कालानुगम, स्पर्शनानुगम, उसके जो भेद चैप्टर्स होते हैं उसकी बात है। आगे बढ़ते हैं। वह श्रुत ज्ञान पूर्वानुपूर्वी से द्वितीय, देखो क्या कहना चाहते हैं, अनुपूर्वी बता रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें देखे थे ना, उसमें नाम बताना वगैरह, अनुपूर्वी बताना, वो उपक्रम के भेद होते हैं। तो अनुपूर्वी में क्या लेते हैं, जैसे वृषभ से लेकर महावीर तक कहेंगे तो पूर्वानुपूर्वी हो जाएगी। तो ज्ञान के जो पांच भेद है उसमें श्रुत ज्ञान का नंबर कहाँ आएगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो देखो वही कह रहे, श्रुत ज्ञान पूर्वानुपूर्व से द्वितीय, क्योंकि मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान, ये हमारी ऑर्डर है। तो पूर्वानुपूर्वी से वो द्वितीय होगा, पश्चादानुपूर्वी से उसी को चौथा कहेंगे, कि केवल ज्ञान को पहला नाम देंगे, फिर मनपर्य, फिर अवधि, और फिर इसका नंबर आता है, ये चौथा नंबर। और यथा तथानुपूर्वी से प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय है, कभी भी उसका नंबर देखेंगे, डायरेक्ट उसका ही नाम करेंगे, या हम ऐसा भी कहेंगे अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, ये तीसरा है, किसी भी ऑर्डर से ले सकते हैं। श्रुत ज्ञान यह नाम नो गौण्य है, यानी गुण से वो उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि श्रोत्रादिक इंद्रियों से नहीं उत्पन्न हुए ज्ञान की श्रुत ज्ञान संज्ञा के गुण्यता का अभाव है। यानी श्रुत यानी सुनकर हुआ, ऐसा उसमें नहीं लेना है, इसलिए उस नाम से वो केवल सुनकर होने वाले ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान नहीं कहते, इस तरह से उसका अर्थ लेना है, इसलिए उसका नाम नोगोण्य है। प्रमाण एक ही है, क्योंकि यहाँ श्रुत सामान्य की विवक्षा है, श्रुत सामान्य इटसेल्फ वो प्रमाण है, यानी उसमें श्रुत ज्ञान के कोई भेदों की यहाँ नहीं चर्चा करना, श्रुत ज्ञान हमारा विषय है, इसलिए वो एक है। श्रुत सामान्य ने बिना भेद किए वो सामान्य का ग्रहण। अब अगर उसके भेद करते हैं तो अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वार की विवक्षा से श्रुत ज्ञान संख्यात है, यानी एक एक अक्षर बढ़ते हुए फिर 1634,83,07,888 अक्षरों का एक पद, संख्यात हजार पदों का एक संघात, संख्यात हजार संघातों का एक प्रतिपत्ति, ये जो है वो इसी में आ रहे हैं, और इतने इतने संख्यात हजार उसके एक अनुयोग। तो ये जो बातें हैं ये उसकी विवक्षा से श्रुत ज्ञान संख्यात कहा, क्योंकि शब्द तो संख्यात हो गए ना, उसकी अपेक्षा लगा ली। अथवा प्रमेय अनंत होने से वो अनंत है, श्रुत ज्ञान को अनंत क्यों कहा, उसमें तो अनंत अर्थ गर्भित है, प्रमेय उसका अनंत है, इसलिए वो अनंत भी कहेंगे उसको। वक्तव्य स्व समय और पर समय है, क्योंकि सुने और दुर्नय के स्वरूप की यहाँ प्ररूपणा की गई है। यहाँ दुर्नय का स्वरूप बताया कि नहीं, दुर्नय क्या होते बताया ना, वो पर समय हो गया, और सुने का स्वरूप बताया वो स्व समय की वक्तव्यता हुई। कभी कभी जहाँ अन्य मतियों का एकांत से वो निराकरण कर देते हैं तो उसको हम कहेंगे वो पर समय है। अब यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं